नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत अब तक 95.92% गणना पत्र जमा किए गए। पुनरीक्षण के 6 दिन शेष बचे। राज्य में 12,700 से अधिक नए मतदान केंद्र गठित। केंद्रों की संख्या बढ़कर 90,712 हुई। बिहार विधानमंडल का 5 दिवसीय मानसून सत्र कल से हो रहा है शुरू। और केंद्र सरकार ने भारत माला परियोजना 2 के तहत पटना से पूर्णिया के बीच बनने वाले 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निर्माण को मंजूरी दी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत अब तक 95.92% गणना प्रपत्र जमा हो चुके हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि 7,57,00,000 से अधिक गणना फार्म एकत्र किए गए हैं। आयोग ने कहा कि अब केवल 32,23,023 मतदाताओं को ही अपने फॉर्म जमा कराने हैं। इसके लिए 6 दिन शेष बचे हैं। आयोग के अनुसार अभियान के क्रम में अब तक 14,29,354 मतदाता मृत पाए गए हैं। 19,74,246 मतदाता अस्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए हैं। 7,50,213 मतदाता एक से अधिक स्थानों पर रजिस्टर्ड पाए गए, जबकि 11,000 मतदाता अपने पते पर नहीं पाए गए हैं। आयोग के अनुसार बचे हुए 32,00,000 मतदाताओं को जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। अस्थायी रूप से देश के विभिन्न भागों में गए प्रदेश के मतदाताओं को शामिल करने के लिए भी चुनाव आयोग सभी माध्यमों से उन्हें सूचित कर रहा है। बचे हुए शहरी मतदाताओं को जोड़ने के लिए भी सभी 261 स्थानीय निकायों के सभी 5,683 वार्डो में विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। 1 अगस्त को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन होगा। उसके बाद भी सूची में कोई भी नाम अगर गलती से जुड़ गया या छूट गया हो या उसमें कोई त्रुटि हो तो उसे 30 अगस्त तक सुधारा जा सकता है। इसके लिए कोई भी मतदाता, राजनीतिक दल या उनके द्वारा नियुक्त BLA दावे आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के पूरा होने तक बूथ लेवल अधिकारी और BLO सहित अन्य कर्मियों के तबादले पर रोक लगा दी गई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को इस संबंध में निर्देश दिया है। निर्देश के अनुसार DEO, ERO, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी और मतदाता सूची से संबद्ध कोई भी पद रिक्त नहीं रखने तथा आयोग की पूर्ण मंजूरी के बिना ऐसे किसी भी अधिकारी का तबादला नहीं करने का निर्देश दिया गया है। प्रदेश में 12,712 नए मतदान केंद्रों का गठन किया गया है। इसके साथ ही राज्य में केंद्रों की संख्या बढ़कर 90,712 हो गई है। चुनाव आयोग के निर्देश पर सर्वदलीय बैठक के दौरान निर्वाचन विभाग के अधिकारियों ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को इसकी जानकारी दी। मतदान केंद्रों के पुनर्गठन के दौरान 12,479 बूथों को उसी भवन या परिसर में स्थापित किया गया है जहां पहले से अन्य बूथ थे। बैठक में राजद के चितरंजन गगन, मदन शर्मा, मुकुंद सिंह, कांग्रेस से संजय पांडे, जदयू से अनिल कुमार, भाजपा से राधिका रमन, माकपा के सर्वोदय शर्मा और भाकपा माले के रणविजय कुमार शामिल हुए। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर 1,50,000 से अधिक CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने बताया कि चुनाव के दौरान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए राज्य के हरेक बूथ पर 2 या 3 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। विधानसभा का 5 दिवसीय मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। 25 जुलाई तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें होंगी। विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने बताया कि 17वीं विधानसभा का यह अंतिम सत्र है। श्री यादव ने कहा कि सत्र के पहले दिन चालू वित्तीय वर्ष का प्रथम अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखा जाएगा, जबकि 22 और 23 जुलाई को विधायी कार्य निपटाए जाएंगे। 24 जुलाई को अनुपूरक बजट पर वाद विवाद के बाद मतदान होगा और सत्र के अंतिम दिन गैर सरकारी संकल्प लिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों में सुगम कामकाज सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। सत्र कल से 21 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और कई विधेयक पारित कराए जाने की संभावना है। संसद के मॉनसून सत्र से पहले विपक्षी ईडी गठबंधन के नेताओं की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, शिवसेना यूटीवी, डीएमके, सीपीआईएम और एनसीपी शरद पवार गुट सहित अन्य दलों ने हिस्सा लिया। बैठक में अन्य लोगों के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव और डीएमके पार्टी के त्रिची शिवा मौजूद थे। मीडिया से बातचीत में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि बैठक के दौरान मॉनसून सत्र में पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दे उठाने पर दलों के बीच सहमति बनी है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण को लेकर 360 डिग्री बदलाव देखने को मिल रहा है। उन्होंने पटना में महिला सहभागिता से विकसित बिहार की परिकल्पना विषय पर एक सम्मेलन को संबोधित किया। श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने महिला सहभागिता से आगे बढ़कर महिलाओं के नेतृत्व में संकल्प लिया है, जिसे आगे बढ़ाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुद्रा योजना में बिना बंधक के ऋण लेने वालों में 60% लाभार्थी महिलाएं हैं। केंद्रीय मंत्री ने बिहार में महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों में आरक्षण और सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर नीतीश सरकार के फैसलों की सराहना की। इधर समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार का समूह मॉडल पूरे देश में लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार अब प्रगति की राह पर है। श्री सिंह ने कहा कि 3 लाख जीविका दीदियों वाले जिलों में महिला बैंक स्थापित की जाएगी और महिला डेयरी की भी स्थापना करने का प्रयास किया जा रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार से पलायन के मुद्दे पर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की आलोचना की। बिहार के मुंगेर में पार्टी की एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राजद और कांग्रेस के 15 वर्ष के कार्यकाल में बिहार से लोग पलायन को मजबूर हुए। इस दौरान लोग शिक्षा से भी वंचित रहे, वहीं अब ये दल रोजगार की बात कर रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Patna पर जा सकते हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भोजपुरी को भाषा का दर्जा देने और इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का आग्रह किया है। उन्होंने मोतिहारी में आयोजित प्रधानमंत्री की जनसभा में यह मांग रखी।
भोजपुरी के प्रति उन्होंने जो सम्मान दिखाया है, प्यार दिखाया है, जरा इस भोजपुरी पर कृपा दृष्टि थोड़ी और उनकी हो जाए। चाहे सहरसा का इलाका हो, सारण का इलाका हो, चंपारण का इलाका हो, बिहार में लगभग 9-10 जिले के लोग भोजपुरी बोलते हैं, लेकिन भोजपुरी का सम्मान अभी तक देश के स्तर पर नहीं मिल पाया। जो सम्मान मैथिली को पहले की सरकार में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार से देने का काम, मैं इस मंच से आकर के प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूँ, किसी तरह का सम्मान भोजपुरी भाषा को भी प्रधानमंत्री जी देने का काम करें।
प्रदेश के विभिन्न भागों में मॉनसून की सक्रियता फिर बढ़ गई है। आज सुबह से ही राजधानी पटना समेत आसपास के जिलों में हल्की बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज जिले में अनेक स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान पटना समेत दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व भागों में कई स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात की आशंका है।
दिनांक 20 जुलाई 2025 को राज्य के उत्तर भाग के जिलों के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है, तथा राज्य के दक्षिण पूर्वी और दक्षिण मध्य भागों के जिलों के एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है।
नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में हो रही बारिश के कारण प्रदेश की नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। पटना के गंगा जोन के फ्लड कंट्रोल एंड ड्रेनेज की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार पटना में गंगा नदी खतरे के निशान से 0.37 मीटर और समस्तीपुर में 78 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ रही है। साथ ही गंगा की सहायक नदी सोन और पुनपुन नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। समस्तीपुर जिले में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई गांव बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। कटिहार जिले के बरारी में गंगा चेतावनी स्तर को पार कर गई है। बरंडी नदी भी चेतावनी स्तर को पार कर गई है। वहीं खगड़िया में गंगा खतरे के निशान से 64 और बूढ़ी गंडक नदी 45 सेंटीमीटर नीचे है। पटना के गांधी घाट पर गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 35 सेंटीमीटर और हाथीदह में 13 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया। वहीं कोइलवर में सोन नदी और किंजर में पुनपुन नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। केंद्र सरकार ने भारतमाला परियोजना 2 के तहत पटना से पूर्णिया के बीच बनने वाले 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे निर्माण को मंजूरी दे दी है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अधिकारियों के अनुसार PPPAC के तहत इस परियोजना का निर्माण हैम मोड में होगा। निर्माण एजेंसी 60% राशि खर्च करेगी, 40% राशि केंद्र सरकार देगी। निर्माण एजेंसी को टोल प्लाजा से पैसे की भरपाई की जाएगी। इस सड़क का एनाइलमेंट पिछले 15 जनवरी को ही मंजूर हो चुका है। प्रदेश के सभी थानेदारों को गुंडा रजिस्टर अपडेट रखना होगा। इसमें सभी चार्ज सीटेड अपराधियों के नाम दर्ज होंगे और थानों में इसकी नियमित परेड सुनिश्चित कराई जाएगी। सजायाफ्ता कैदी चंदन मिश्रा हत्याकांड में गश्ती के दौरान लापरवाही बरतने वाले पटना जिले के शास्त्री नगर थाने के 5 सहित कुल 8 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। CTSP दीक्षा ने बताया कि निलंबित किए जाने वाले पुलिस कर्मियों में 1 दरोगा, 2 ASI और 2 सिपाही शामिल हैं। वहीं गश्ती में लापरवाही बरतने के मामले में गांधी मैदान सचिवालय और गर्दनीबाग थाने के 3 ASI भी निलंबित किए गए हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हवाले से लिखा है, भारत 2027 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। दैनिक भास्कर ने चंदन मिश्रा हत्याकांड पर लिखा है, कोलकाता से शूटर तौसीफ समेत 8 गिरफ्तार, इनमें एक महिला भी। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, किसानों पर दिए विवादित बयान के लिए ADG ने मांगी माफी। प्रभात खबर ने मतदाता पुनरीक्षण अभियान को बड़ी खबर बनाया है। अखबार लिखता है, पार्टियां करें मतदाताओं से फॉर्म भरवाने में सहयोग। आज अखबार की सुर्खी है, ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन ने शुरू किया दुनिया के सबसे बड़े बांध का निर्माण। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत अब तक 95.92% गणना प्रपत्र जमा किए गए। पुनरीक्षण के 6 दिन शेष बचे। राज्य में 12,700 से अधिक नए मतदान केंद्र गठित, केंद्रों की संख्या बढ़कर 90,712 हुई। बिहार विधानमंडल का 5 दिवसीय मानसून सत्र कल से हो रहा है शुरू। और केंद्र सरकार ने भारतमाला परियोजना 2 के तहत पटना से पूर्णिया के बीच बनने वाले 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निर्माण को मंजूरी दी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।